ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
விருத்தி பிரதிபலித்த சைத்தன்யத ஃபலஹே தஜ்ஜன் அதிசய பிரம்மமே நஹி ஆதா ஹே, தோ பிரம்மமே ஃபல வியாப்தி நஹி. जिस प्रकार आप दीप घट में ढका गया, घट को हटा दिया, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं. इसी प्रकार ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, घट को प्रकाश करने के लिए फल की आवश्यकता है. वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल, उसके कारण घट प्रकाशित तो हो जाएगा. किंतु ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता नहीं है. दर्पण भी सूर्य किरण में रखो, दर्पण का प्रतिबिंब दीवाल में आ जाएगा. उसी दर्पण को सूर्य को कर दो, दर्पण में प्रतिबिंबित होकर प्रकाश जाकर सूर्य को प्रकाश कर देगा. सूर्य के प्रतिबिंब दर्पण में जाकर के सूर्य में कुछ अतिशय नहीं कर सकता है. इसी प्रकार ब्रह्म का प्रतिबिंब हुआ वृत्ति में, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य तज्जन्य अतिशय घटपट आदि में तो जड़े में होगा, ब्रह्म में नहीं होगा. तो ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है. ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भि निवारितम्. ब्रह्मण अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता. ब्रह्म में अज्ञान निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है. तो यन्मनसा न मनुते यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये सब क्या कहते हैं? फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भि निवारितम्. फल व्याप्ति का निवारण किया गया, ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है. मनसा यन मनसा न मनुते यतोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, ये निषेध करती श्रुति किसका? फल व्याप्ति का निषेध करती. और मन सेवानुद्रष्टव्यम ज्ञेयम यत प्रवक्षामि ब्रह्मविद आपनोति परम. ज्ञान ब्रह्म का होता है, होता है मतलब मन से होता है. क्या समर्थन क्या जाता है? वृत्ति व्याप्ति. ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है क्या? घट में वृत्ति व्याप्ति है, ब्रह्म में भी वृत्ति व्याप्ति है. इसलिए कहा मन सेवानुद्रष्टव्यम, मन से ही ज्ञान होगा. बुद्धि ग्राह्यम ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्षामि ब्रह्म ज्ञान से मुख्य, तभी बनेगा ब्रह्म का ज्ञान होता है. वो कौन सा ज्ञान है? वृत्ति ज्ञान. और जो मन का विषय नहीं, अप्रमेयम अवागमन सगोचरम, उसके द्वारा क्या कहा गया? फल व्याप्ति का. तो ब्रह्म में यदि फल व्याप्ति नहीं तो क्या वृत्ति व्याप्ति रहेगी? ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है तो फल व्याप्ति भी है नहीं. घाट में वृत्ति व्याप्ति है, घाट में वृत्ति व्याप्ति है, किंतु फल व्याप्ति किसमें? वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति. अब ब्रह्म में जहां जहां ब्रह्म को अप्रमेय अवाह मनसगोचर यन मनसा न मनुते मनसा अप्राप्य मनसा सह, ये सब निषेध करेंगे किसका? फल व्याप्ति का निषेध करेंगे. और ज्ञेय ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान से मुख्य है, मन सेवानुद्रष्टव्यम, ये सब किसका समर्थन करेंगे? हाँ, वृत्ति व्याप्ति का समर्थन करते हैं. तो यहां मनसा सह अप्राप्य कहेंगे तो किसका निषेध होगा? फल व्याप्ति नहीं. तो ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है? किससे ज्ञान होगा? वृत्ति व्याप्ति है. वो ब्रह्म ज्ञान क्या पदार्थ हुआ? क्या पदार्थ? जड़ चेतन नहीं बुद्धि है, क्या पदार्थ है? वृत्ति क्या पदार्थ है? पृथ्वी जल तेज क्या है? अंतकरण का परिणाम. अंतकरण क्या पदार्थ है? खाली जड़ कह देने से सरल से नहीं. अंतकरण क्या चीज है? हाँ, ये बोलना है खाली मिल करके, खाली चावल दाल मिल से खिचड़ी ऐसे ही मिल करके. अपन चिकित पंच महाभूत के समष्टि सत्वांश से अंतकरण बना, उसका परिणाम ही वही है. और फिर जड़ ही है, जड़ है ना? नहीं, उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान. ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है नहीं होती? प्रमाण से है नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. तो फिर ब्रह्म ज्ञान होने नष्ट हो गया तो ज्ञान व्यर्थ हो गया. ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश पहले से ही ज्ञान उत्पत्ति होकर के अज्ञान आवरण को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद यदि ब्रह्म ज्ञान अलग रह जाए तो ब्रह्म अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा। वहां प्रश्न है ब्रह्म ज्ञान का नाश कैसे होगा। ब्रह्म ज्ञान एक तो ब्रह्म है और एक ब्रह्म ज्ञान है, द्वैत हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान का नाश होना चाहिए। कौन नाश करने के लिए और कौन है? अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान कार्य सो चले गए, ज्ञान बच गया। ब्रह्म के और एक ज्ञान अद्वैत हुआ तो अज्ञान फिर ज्ञान कैसे नष्ट होगा। इसके लिए कतक दृष्टांत देते हैं। मैला पानी गंगा जल में पानी है, मैला वर्षा के समय है, हम साल भर पीते हैं गंगा जल, तो उसमें कतक एक पेड़ बीज होता है, फेटी के लगाने से थोड़ा हो जाता है, किंतु फेटी के ठीक दृष्टांत नहीं है, क्योंकि फेटी के थोड़ा अधिक घिस दो तो पानी में उसका आ जाता है। किंतु कतक रज एक बीज है, घिस देने से वो महिला को बैठा देता है। कतक जो रज कतक बीज का अंश वो भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं शांत हो जाती, क्योंकि उसका कारण अज्ञान है। कारण अज्ञान नहीं रहा तो ज्ञान कैसे रहेगा। अभी आपत्ति ब्रह्म ज्ञान यदि नष्ट हो जाए फिर आप अज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञान से ज्ञानी था, ज्ञानी आप हो जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसके बाद ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर मूर्ख बन जाएगा। वो तो ब्रह्म पहले से अज्ञानी ज्ञानी का दोनों का बराबर है। देखो आपने पढ़ा है ये जो कुछ पाठ आपने पढ़ा है, बच्चे पढ़ते हैं ना कुछ, व्याकरण किसने पढ़ा है? व्याकरण है, भाषा में अन्य भाषा में सौ व्याकरण सौ भाषा में अलग अलग है। व्याकरण कुछ तो पढ़ा है ना नहीं आप लोगों ने? संस्कृत हो अन्य भाषा में पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है तो उसका ज्ञान है या नहीं? कुछ ज्ञान है। अच्छा जो ज्ञान है हमेशा उसका ज्ञान रहता है क्या? हमेशा रहता है। भोजन करते समय, भोजन बनाते समय, पाठ पढ़ते तो ज्ञान रहता है नष्ट होता है? जैसे आपका नाम आपको मालूम है ना नहीं, नाम का ज्ञान आपको है हमेशा रहता है ज्ञान? नहीं, जरूरत तो अजरूरत छोड़ दो, आपका नाम का ज्ञान हमेशा रहता है। अभी जितने देर बैठे कितने देर तक आपका नाम आप याद कर रहे थे तो था ज्ञान था। ज्ञान हम कहाँ प्रयोग करते हैं? ज्ञान होने के बाद संस्कार अंतकरण हुआ, संस्कार रहता है, इसे जब चाहेंगे हम उसको उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कि हमें सोचते हैं मैं अमुक हूँ, मैं देवदत्ता हूँ, मैं देवदत्ता हूँ, ऐसे ज्ञान रहता है? नहीं रहता है। ज्ञान एक बार हुआ है वो ज्ञान इतने दृढ़ है जब चाहेंगे मैं देवदत्ता ही निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार व्याकरण आपने पढ़ा है तो व्याकरण का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान हमेशा रहता है। मतलब अब घट ज्ञान पट ज्ञान नहीं होगा, खाली व्याकरण ज्ञान चलता रहेगा तो और किसी का ज्ञान नहीं होगा। वो संस्कार दृढ़ होने के कारण जब चाहे वो ज्ञान हो जाता है। संस्कार रहने से कहता हमको ज्ञान है, कभी कभी कहते ये ज्ञान हमको था अभी भूल गए। व्याकरण हमने बहुत पढ़ा था, अष्टाध्यायी पूरा कंठस्थ किया था, किंतु अभी नहीं ये भूल गया। तो नहीं मतलब क्या है? संस्कार नहीं रहा। संस्कार जब तक है कहते हाँ हमको ज्ञान है, पूछो पूछो हम बता देंगे। ज्ञान है मतलब क्या? 4000 सूत्र का ज्ञान हमेशा रहता है किसको? 4000 सूत्र ज्ञान को हमेशा एक क्षण में रहेगा? नहीं रहता है। तो कहते हमको कंठस्थ है। अभी जो गीता का पंचोदश अध्याय आपको कंठस्थ है बहुत को हाँ कंठस्थ नहीं तो कर लेना चाहिए। पंचदश एकादश आज एकादशी है ना, तो वो कंठस्थ है, याद है, ज्ञान है उसका, हमेशा आवृत्ति होती है, संस्कार है, जब चाहे कर सकते तो कहते हमको ज्ञान है। और कभी कोई नहीं करता आवृत्ति तो भूल जाता है, कहता हमको तो पहले था ज्ञान था या कंठस्थ था, अभी भूल गए। भूल गए कब कहता? जो संस्कार भी नहीं रहा, प्रयास करे याद करने के लिए याद नहीं हुआ तो कहता अब इसका ज्ञान हमको नहीं है, भूल गए तभी कहेंगे। और यदि संस्कार है तब तो कोई नहीं कहता इसका ज्ञान नहीं, ज्ञान हम जानते हैं इसका ज्ञान है। ज्ञान किसको कहते थे? संस्कार है तो कहते ज्ञान है, ये नहीं कि हमेशा उसकी आवृत्ति चलती रहती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, किंतु जब चाहे मैं कौन हूं उसको निश्चय अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये अंतकरण में रहता है। और ज्ञान अज्ञान का नष्ट कर दिया, अपने कार्य कर लिया। अज्ञान अनादि है, एक बार नष्ट होने का तो फिर आ जाएगा कहां से? आगे अज्ञान आने की संभावना नहीं है। किंतु ब्रह्म ज्ञान जो हुआ निरंतर में ब्रह्म इसे चलता रहता, ऐसा नहीं आवश्यक नहीं, जैसे आपका नाम आपको निश्चय है, निश्चय है आपका नाम, उसके लिए कभी संशय नहीं होता है, भ्रांति नहीं होती है, आवृत्ति करने की आवश्यकता है। बहुत लोग में कहीं बाजार में गए तो अपने नाम भूल जाता है कोई, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद व्यवहार करते समय सब के बीच में रहेगा तो अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाएगा, नहीं विस्मरण नहीं मतलब क्या है, संस्कार नहीं रहे तो कहेंगे विस्मरण, संस्कार जब तक है स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। आपके नाम का स्मरण आपने कितने बार किया, नहीं किया तो विस्मरण हो गया, इसको विस्मरण नहीं कहते। इसलिए ब्रह्म ज्ञान एक बार हो गया तो ज्ञान संस्कार रहता है तो जब चाहे अपने को जानता है वो कहता है। अज्ञान नष्ट होने से फिर अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, अनादि नष्ट हो गया तब ब्रह्म ज्ञान निवृत्त होता है, भी उत्पत्ति होती है ज्ञान की, नष्ट भी होता है, किंतु संस्कार अपना कार्य कर लिया, अज्ञान को नाश कर लिया। अज्ञान अनादिकाल से है, वो नष्ट होगा किस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म विषय ज्ञान से। वो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक उत्पन्न होता है, नित्य है, उत्पन्न होता है नित्य। जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं, नहीं है, अनित्य ज्ञान उत्पन्न होगा प्रमाण से, अज्ञान को नष्ट करेगा। तब जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, न विभेदी कुतश्च नीति आनंदम ब्रह्मण विद्वान, क्या क्या थे ब्रह्म के स्वरूप आनंद, ब्रह्म अलग आनंद अलग नहीं, ब्राह्मण सत्यंत है, ब्रह्म का स्वरूपभूत जो आनंद अवेद में गौण प्रयोग है, आनंद को विद्वान जानने वाला कुतश्च न कहीं से भय नहीं करता है। पहले मनोमय कोश में भी आया था, कहा था मनोमय, कहा न विभेति कहा था, तो वहां जो कहा था न विभेति कुतश्च न कहा था, वहां तो मनोमय कोश कह करके मन में ब्रह्म ज्ञान के लिए स्तुति करने के लिए, ज्ञान साधने की स्तुति के लिए, मन ब्रह्म ज्ञान का साधन उसकी स्तुति के लिए पहले कह दिया था। वस्तुतः यहां कहते हैं न विभेति कुतश्चन, वह न विभेति कहीं किसी से भी भय नहीं करता है जब ब्रह्म को जान लिया, कुछ कुछ नहीं जब आवश्यकता नहीं। अब पहले अज्ञान पहले नष्ट हुआ था, जितने प्रारब्ध था प्रारब्ध समाप्त होते ही अज्ञान समाप्त हो गया। नहीं, जिसको ब्रह्मज्ञान साक्षात्कार हो गया है उसके लिए तनुन तेजत्वा काश्याम सपच से गृहतवा, आगे अंत में विचार करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान जब नहीं है तो अंतिम समय में चिंतन करना आवश्यक, उपासक के लिए अंतिम समय चिंतन, मार्ग चिंतन, प्रार्थना सब की आवश्यकता है। जिसको साक्षात्कार हो गया आगे उसी समय देखता है कि मेरा जन्म कभी नहीं हुआ था, संसार कारण संसार मेरे में है ही नहीं, आगे ये बंधन फिर जन्म ये इसके कोई शंका कोई प्रश्न ही नहीं। अंतिम समय मन में कुछ विचार हो उसे मन के साथ उसका तादात्म्य नष्ट हो गया तो कोई मतलब ही नहीं, वो कुछ नहीं, मिथ्यात्म निश्चय हो गया, कुछ आवश्यक नहीं है। ये कहता है किसी से भय नहीं करता है कहीं ज्ञान होने के बाद, किंतु एक भय होता है पाप पुण्य से भय, पाप किया है तो भय। बहुत लोग जिंदा जीवित अवस्था में कहते कोई नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते पुण्य कर्म नहीं करते, बहुत लोग ऐसे होते हैं पुण्य के कोई पुण्य पाप छोड़ो कोई मतलब नहीं ऐसे कहने वाले होते हैं, किंतु जब अंतिम समय होता है अज्ञानी को बड़ा कष्ट होता है, उस समय ये घमंड खत्म हो जाता है। जब देखता है यमराज यमदूत तो आगे लोहे की कड़ी लेकर के और कर्म फल देने वाले उधर यम भुवन में नरक में यातना देने वाले तैयारी, बड़े बड़े नाथ लोहा कड़ी लेकर खड़े, आओ तुम नहीं मानते नहीं मानते ना, अभी देखो तुमको मनाएगी। जो नहीं मानता नहीं मिलता कहेंगे ना, उसको पैर पकड़ के धोबी जैसे कपड़ा को पिटता है ना, लेकर पत्थर में पिटेंगे, पिटेंगे तो सिर चिरचुर हो जाएगा, इधर कहीं गिर जाए इधर कुछ गिर जाए, किन्तु मरेगा नहीं, कष्ट होगा क्या? हाँ, जब मर जाएगा तो कष्ट कहाँ होगा, इसे मरेगा नहीं, पिटेंगे जोर से, हाँ हाँ मुंचा मुंचा, उसको ले करके जैसे पकड़ा करते हैं ना ऐसे तैल भांडा बड़ा बड़ा होगा उसमें डाल देंगे, चढ़ चढ़ उड़ता होगा, हाँ चिल्लाता रहेगा मरेगा नहीं, फिर उसको लेकर के पीटो मारो पत्थर से तोड़ो, ऐसे उसको कष्ट देते हैं। उस समय और जो कहता है मैं नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, वहां चलेगा एक दो पार होगा तो आज हाँ हाँ मुंचा मुंचा, ये दृश्य उसको दिख ही जाता है मुझे क्या कष्ट मिलेगा मरते समय। आगे का उसको दृश्य दिखता है, सपने में जैसे दिखता है उसको अभिमान आगे का दिख जाता है। इसलिए कहीं कहीं लोग कहते हैं वो आगे मुझे लेने के लिए, ऐसे भी देखे कोई कहते हैं भगवान आगे मुझे लेने के लिए, मैं जाने का समय में जा रहा हूं, ऐसे भी कोई किस कोई कोई कहते हैं डरते हो आगे मुझे, तो उनको दृश्य दिख जाता है, उस समय पश्चाताप होता है, किंतु ज्ञानी को ऐसे पश्चाताप नहीं होता है। एतम भाव न तपति, ज्ञानी को तपति कष्ट नहीं देता है। कौन किस प्रकार कष्ट होता है? जैसे अज्ञानी को कष्ट होता है, अज्ञानी को कैसे कष्ट होता है? केमहम साधु ना करवम, मैं साधु पुण्य कर्म क्यों नहीं किया? उसी समय मरते समय पश्चाताप होता है, मैं जीवन ऐसे बिता दिया, क्यों मैंने पुण्य कर्म नहीं किया? बहुत कष्ट होता है, बड़ा पश्चाताप। उस समय करने का कुछ यही नहीं, जीवन भर तो कहता था हम नहीं मानते, कुछ नहीं करेंगे। मरते समय बड़ा कष्ट होता है, किम हम साधु ना करवम, केवल इतने नहीं पाप कर्म फल भोगने के लिए उसको दिख जाता है, ये भी पश्चाताप करता है, किम हम पापम करवम, अहम किम, क्यों मैंने इतने पाप कर्म किया, क्यों मैंने पुण्य कर्म नहीं किया? अज्ञानी का बड़ा पश्चाताप होता है मरते समय। वो जो कष्ट है बस किसको कहने का नहीं, न शिक्षा देने का है, पश्चाताप करता दुखी होता, आगे दृश्य देखता आगे क्या भोगना पड़ेगा। ये यदि पहले पता चल जाता तो सब तो सत्कर्म सन्मार्ग में चलते, पहले पता नहीं चलता, जब पता चलता उसमें करने का कुछ नहीं, उपाय नहीं, उपाय नहीं दिख जाता, क्या होगा, कितने कष्ट होगा। उस समय याद करता है मैं सारा जीवन व्यर्थ बिता दिया, क्यों मैंने इतने पाप कर्म किया, क्यों पुण्य नहीं कर्म किया। ये अज्ञानी को अवश्य ही कष्ट होता है, श्रुति कहती, किन्तु जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको न तपति, एतम ह वाव न तपति, अज्ञानी को तो कष्ट होता है, किम हम साधु ना कर्म, क्यों पुण्य कर्म नहीं किया, क्यों पाप कर्म किया, ऐसा कष्ट ज्ञानी को नहीं होता है। ज्ञानी को क्यों नहीं होता, श्रुति कहती, जिसको आत्मज्ञान हो गया, अहम अस्मि परम ब्रह्म, अपने को क्या मानता है, सुनो ब्रह्म, अपने को तो ब्रह्म मानता है, बाकी सब पदार्थ को क्या मानता है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना कुछ नहीं, पुण्य पाप को क्या मानेगा, बस पुण्य पाप सब कुछ ब्रह्म है, तो पुण्य पाप को भी अपने स्वरूप से दिखता है, पुण्य पाप ही मेरा स्वरूप है, हम सर्वात्मक, सर्वम ब्रह्म, अहम सर्वात्म ब्रह्म हूं, अहम अस्मि सर्वात्मक होने से वो क्या होता है, स य एवं भी एवं विद्वान एते आत्मान स्मृणते, जो ज्ञानी है ये पुण्य पाप को भी आत्मा रूप से मानता है, प्रणते कहते बलयति प्रणयति, पुण्य पाप को अपना स्वरूप मानता है, ज्ञानी है अपना स्वरूप मानता है, सारा ब्रह्मांड अहम अस्मि ब्रह्म, एते पुण्य पाप को भी आत्मा रूप से मानता है, पुण्य पापी मेरा स्वरूप मानेंगे तो उसको पुण्य पाप तापक नहीं होते। उभय ये वेश एते आत्मान स्मृणते, ये दोनों पुण्य पाप को यह आत्मा रूप से ज्ञानी मानता है, अहम अस्मि आत्मा रूप से मानने से अपने स्वरूप है, अपने से भिन्न कुछ नहीं, इसे उसको कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे कौन य एवं भी जो इसे ज्ञान हो गया सर्वात्म ब्रह्म है, ऐसे उसको अंतकाल में कोई तपने तप कष्ट नहीं होता है, और किसी से भय का कारण कुछ नहीं रहा, किसी से भय नहीं करता है, अभय पद को प्राप्त करता है, यह एवं वेद ज्ञानी। इति उपनिषद, यहाँ है उपनिषद रहस्य ज्ञान, परम रहस्य, सारे विद्या में श्रेष्ठ परा विद्या, सब विद्या से परम रहस्य ये कहा गया, जिससे मोक्ष परम से होता है। इति उपनिषद, इति ब्रह्मवल्ली समाप्त हुआ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ये तो ब्रह्मवली समाप्ति के लिए शांति पाठ है, आगे फिर भृगुवली प्रारंभ होगा उसके लिए शांति पाठ फिर हुई। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वीनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। पहले समय था ब्रह्मविद आपनोति परम, यहाँ ब्रह्मवल्ली का अर्थ संक्षेप से सूत्र रूप से कहा, कह करके ब्रह्म का लक्षण किया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो ब्रह्म सर्व कारण है, ब्रह्म ज्ञान के लिए बता करके ब्रह्म सर्वात्मक है ये बताया। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से ब्रह्म ज्ञान के लिए आकाश आदि सृष्टि कह करके तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशद सृष्टि करने वाला कार्य में प्रवेश बताया। सर्व कार्य में स्थित है सदरूप ब्रह्म, कार्य वस्तुतः नाम रूपात्मक है, उससे विलक्षण है ब्रह्म, अदृश्य आदि धर्म के वे अहम अस्मि ऐसे ज्ञान हो इसके लिए अनुप्रवेश कहा। उसके बाद जब ज्ञान हो जाता है पुण्य पाप कर्म आगे उसका जन्म आरंभ का नहीं होते। ज्ञान नहीं हुआ तो पाप पुण्य कर्म से फिर शरीर कर्म मिलता है, भोग करना पड़ता है। यहाँ ब्रह्म विद्या इत्युपनिषद कहकर समाप्त तो हो गई, किन्तु ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए साधन तप चाहिए, इसलिए यहाँ कुछ उपासना भी कहेंगे। तप कथन करने के लिए प्रारंभ होता है। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्रम मनोवाचमिति तम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। भृगुर्वै प्रसिद्ध है वारुणी, वरुण पिता का नाम वरुण, वरुण का पुत्र होने से उसको कहते वारुणी। यहां आख्यायिका रूप से कहते हैं पुत्र को पिता उपदेश करते हैं। पुत्र अत्यंत प्रिय होता है लोक में, अत्यंत प्रिय पुत्र को ही ब्रह्म विद्या का उपदेश पिता करते हैं, पिता भी पुत्र को ब्रह्म विद्या उपदेश करते हैं, इसलिए यह ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है। तो अत्यंत प्रिय को भृगु कहते हैं आख्यायिका रूप से। वरुणम पितरम उपससार, वरुण है पिता, भृगु है पुत्र, पिता के पास उपससार श्री गत्यर्थ का पास में गया। पास में जाना जहां गत्यर्थ का धातु उप लगा देंगे, पास में जाना का अर्थ नम्रता के साथ शिष्यत्व है ना। ऐसे पिता तो पूज्य है ही, पिता के पास जाना तो है, किंतु अभी ब्रह्म ज्ञान के लिए जाता है। व्यास जी तो सुकद जी के पिता थे, तो व्यास जी सुकद जी को भेजते हैं जनक के पास, कहते ये पिता तो सम्माननीय है पूज्य है, फिर भी पिता पुत्र संबंध से कुछ थोड़ा वात्सल्य कुछ संबंध है, ज्ञान उपदेश करने के लिए कहते गुरु के पास जाओ। ये योग वास्त्र में आता है शिक्षित हो जाए राजा रानी चूड़ाला है, रानी ब्रह्मज्ञानी विदुषी है, राजा को उपदेश करने पर राजा सोचता है ये रानी ये मुझे क्या बताएगी, इसे रानी बताया सोचा कि मैं उपदेश करने से ग्रहण लिया कुछ लाभ नहीं होगा, उसको सिखा करके कहा वैराग्य ये राजा ये सब राज्य में करके क्या मिलेगा, तपस्या करो तप करना चाहिए अरण्य में जा करके। बार बार कहते 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 राजा को वैराग्य हुआ, राजा चले गए जंगल में। रानी योगिनी थी, वहां ब्रह्मचारी वेश में प्रकट होकर के साहब जंगल में कोई ब्रह्मचारी बोला कहां तुझे तुम कहां से आए क्या कर रहे हो किस लिए आए, तो राजा बोलता है मैं राजा छोड़कर आया। तो रानी कहती सर्व त्याग के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, सब छोड़ना पड़ेगा। राजा कहता मैं तो सब छोड़कर आ गया, क्या नहीं सर्व त्याग नहीं हुआ, क्योंकि नहीं सब छोड़ना पड़ेगा। फिर एक एक छोड़ता है राजा, कुछ वस्त्र कमंडल को छोड़ा उस छोड़ दिया, कुटिया को जला दिया, अंत में जो कपड़ा पहना था उसको फेंक दिया, कहे नहीं सर्व त्याग नहीं हुआ। और क्या रहा, हे रानी का ये अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, बड़ा सो अहंकार रखा है कि मैंने राज्य छोड़कर आ गया, क्या तुमने छोड़ा, तुम्हारा क्या था, तुम्हारा कोई हो तो छोड़कर आया, राज्य तो राज्य है ही, तुम्हारा क्या संबंध हो, तुम्हारा होता तो तुम छोड़कर आते कहते, ऐसे करके अहंकार के त्याग ज्ञान हुआ। तो ज्ञानी होने के बाद भी यदि वहां पिता भावना है वे पत्नी भावना है तो उससे उपदेश ग्रहण नहीं हो, तो यहां पिता पूज्य होने पर भी पितरम उपससार जब है यहां शिष्यत्व ने गया। श्वेत के त्वारुणी छांदोग्य उपनिषद में सत्र अध्याय में आता है तत्वमसी, वहां भी पिता उपदेश करते हैं। पुत्र को पहले गुरुकुल में भेजा था, 12 वर्ष रह करके आया घमंड होकर के, पिता ने पूछा तुमको ये आदेश मिला है एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा अज्ञात का भी ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसे कैसे कहा पुत्र का ऐसे कैसे हुआ, अज्ञात का ज्ञान कैसे हो जाएगा। तो पुत्र डरता है कि फिर भेजेंगे गुरुकुल में और जो और 12 वर्ष, ऐसे एक बोल देता है शायद गुरु को मालूम है, आप उपदेश कीजिए, नहीं तो फिर कहीं जाओ और 12 वर्ष पढ़ो। फिर वो पिता उपदेश करते, पिता ज्ञानी थे, फिर उपदेश करते हैं। तो पिता भी पुत्र को उपदेश करते तो पुत्र पिता के पास शिष्य रूप से उपस्थित होता है।